आखिरी आयत का जो टुकड़ा देखिए, कैसे बंदे को लोगों से बेनियाज करते थे ना। हम कितना चर्ब जुबान हो जाएं, हम खूब बड़ी बड़ी बातें करें, लोग हमसे मुतासिर हों, लोग हमें मजबूर समझें, लेकिन हम असल में क्या हैं ये अल्लाह को पता। बहुत बहाने बनाना, माजरतें पेश करना, बहुत लोगों को रो रो के बताना मैं आपको क्या बताऊँ मेरी कितनी मजबूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत है जिसको मुतमईन कर लें और वो आप खुद हैं। मैं अपने काम से हटी हूँ तो वाकई 100% मैं नहीं कर सकती थी। इट वॉज बियॉन्ड माई रीच, मेरी पहुँच से ये बहुत ऊपर थी बस। क्योंकि देखिए, खुलासा करती हूँ फिर आगे चलेंगे। हमने एक और छोटी सी नेगेटिव चीज़ लेकर फिर पॉजिटिव चीज़ों पर जाना है। तो अभी तक जो बात हमने सूरत नूर की इन आखिरी आयात में देखी कि दीन का काम एक इज्तमाही काम है और इज्तमाही काम में हर एक ईंट की तरह जुड़ा होता है। एक ईंट अपनी जगह से हिल जाए तो पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है। एक ईंट जब अपनी जगह से हटती है तो फिर दूसरी अपने इर्द गिर्द की ईंटों को भी हिला देती है। हम जब उठते हैं ना तो दूसरे भी उठते हैं। हमारे बहाने उजर, बहाने से मेरा गलत नहीं है, याद रखिए कि उजर से मुराद माजूरी है, यानी यू कैंट हैंडीकैप, बंदा माजूर होता है ना, तो बाज़ दफ़ा हमारे उजर सही होते हैं। आप याद कीजिए कि सूरह तौबा में ग़ज़वे तबूक से पीछे रहने वालों के नाम पर एक पारा शुरू होता है, या तज़िरू न इलैकुम इज़ा रजअतुम। तो वजह क्या है? इसलिए कि एक बंदा ना हो तो क्या हो? आप इसको ऐसे समझिए, ऑपरेशन थिएटर ऑपरेट कर रहा है सर्जन, है ना, लेकिन उसके इर्द गिर्द तीन चार हेल्पर्स हैं। आप तसव्वुर मिला, और ये आप दीन के काम को जितना इम्पोर्टेंट समझेंगे, सेंसिटिव समझेंगे, आपके अपने आगे बढ़ने और आपकी कामयाबियों का जरिया समझेंगे, उतनी आपको ये मेरी बात समझ आएगी। हमारे जहन में सेंसिटिविटी के एतबार से ऑपरेशन एक बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है। ऑपरेशन थिएटर है, और डॉक्टर के साथ आपको तो पूरी टीम होती है, कोई उसको औजार पकड़ा रहा होता है और वो खड़े भी वैसे ही होते हैं जहाँ उन्होंने देना होता है। कुछ उसको स्क्रीन पे जो चीज़ें आ रही हैं वो दिखा रहे होते हैं, कोई बेहोश करने वाला डॉक्टर होता है, बस इधर समझ लीजिए। अब एक मरीज आपके आगे लिटा दिया गया, बजाहर डॉक्टर सर्जन है, और एन 15-20 मिनट के बाद जब के ऑपरेशन शुरू हो रहा है और एंथीसीजिया दे दिया गया है और सात जो हेल्पर्स हैं उनमें से कोई अपना बैग पकड़े और उठ के चला जाए, रिजल्ट क्या निकलेगा? बेहोश करने वाला डॉक्टर निकल जाए बीच में से, तो क्या जिंदा शख्स और होश वाले शख्स के हाथ पांव और उसके अंदर से चीज़ें काटेंगे? जिस तरह ऑपरेशन रूम में, ऑपरेशन थिएटर में से कोई निकल जाए तो मरीज़ की जान के लाले पड़ जाते हैं, इसी तरह इज्तमाही कामों में कभी-कभी आप एक का ना होना सारे सिस्टम को ख़राब करता है। मीटिंग का सारा मकसद ख़त्म हो जाता है जब उसमें से कोई एक शख्स नहीं होता। प्रॉब्लम उसके साथ होता है जो इज्तमाहियत में बात करनी होती है कि भाई ये चीज़ करे, वही नहीं है। बाज़ दफ़ा आप वो अहम शख्स हैं कि जिनकी राय से मशवरा बदल जाता है और आप थे ही नहीं, हिस्सा ख़त्म हो जाता है। और मैं एक जुमला बोलती हूँ, क्लासेस में और ये गैदरिंग्स में आना बहुत आसान है, मीटिंग्स में आना बहुत मुश्किल है। इसमें तो हम समझ रहे स्वाब हो रहा है, कुरान की आयतें पढ़ी, ये पढ़ा, इतनी हदीसें पढ़ी, इतनी दुआएं सीखी। बस लोग मीटिंग्स को और अपने जो पर्सनल इस काम के लिए सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तरबियत है, उसको अहम नहीं समझते। हमें सब आता है, मैं दूसरे से पूछ लूंगी, मैं नोट्स ले लूंगी, कभी ऐसा हुआ? याद रखिएगा, वही शख्स दूर तक जाएगा जो इज्तमाही काम की हसासियत का ख्याल रखेगा, उसको अपनी अपनी हैसियत समझे। आप ये कहा करें इधर आते हुए, इसको यूँ समझिए कि अगर मैं ना गई तो आज की क्लास नहीं होनी। इस लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग समझिए, और इसमें छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कभी आपको अपना 19-20 इधर उधर अपॉइंटमेंट करना पड़ा, छुट्टी की, बच्चों को देखा, बड़ों को देखा, मेहमान आ गए, तो इसका तो कि आपने दूसरों को अहमियत नहीं दिलाई कि आप कितने सेंसिटिव काम पे थे और उसकी वजह से आपको आना पड़ा। इंपॉर्टेंस जब होती है तो फिर वो काम उसके हिसाब से होने लगता है। देखिए, नज्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आज हमारे मुसलमानों के दीन के काम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब दिल चाहा कुछ काम शुरू करते हैं और जब हालात ख़राब हुए तो छोड़ दिया। ये तो वही बात हो गया कि मरीज़ को अपने ऑपरेशन थिएटर में लेकर स्ट्रेचर पर डाल भी दिया, बेहोश भी कर लिया, उसके बाद आप मसरूफ़ हो गए, आप जा रहे हैं कहीं, जी अब तुम इधर से खुद ही उठ जाना, मेरे पास अब काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर ही उठ के चला जाए तो क्या होगा? जितनी कुर्बानी ये देनी पड़ती है इस काम में, इतनी और किसी चीज़ में नहीं देनी पड़ती। और इसके लिए फिर एक बात, जाके समा इतात, लीडर की बात को समझो, अमीर की बात समझो, उलिल अम्र की बात सुनो। जिसने तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया, क्लास के लिए बुलाया, प्रोग्राम में जगह दी, जो बंदा उसका मेन जिम्मेदार है, आप उसको बताए बगैर, पूछे बगैर हट नहीं सकते। अच्छा, एक और बात भी समझिए जो बहुत नुकसान देती है। बस लोग इजाज़त तलब करने का मतलब क्या समझते हैं? सब हो गया, हमने बता दिया भाई। जवाब सुना आपने? लेकिन आयतों में अल्लाह ने नबी से क्या कहा? तू जिसको चाहे इजाज़त दे दे। बाज़ लोग कहते हैं हमने बता दिया था। कब बताया था? प्रोग्राम से 1 घंटा पहले। कहाँ से नया बंदा लाएं आपकी जगह? आपको सारे सेशन दिए, आपको ट्रेनिंग्स दी, आपके ऊपर इतना बड़ा काम सोचा डाला, और आप उठ के चले गए। कभी दोबारा उस बंदे को काम ना दें जो बंदा गैर जिम्मेदार हो। मैं अक्सर साथियों को कहती हूँ, निकम्मे मेरे जैसे बेकार बंदों को रख ले, सीख लेंगे आप, सिखा लेंगे आप। उनको कंप्यूटर नहीं आता, आप सिखा लेंगे। उनको चाबी नहीं लगानी आती, लगा लेंगे। उनको सिखा लें। लेकिन बड़े बड़े एफिशिएंट लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट है, उनको, जो आपके साथ चल ही नहीं पाते कमिटमेंट से, उनको जाने दीजिए। उनको फिर ऐसे ही रखें ऊपर ऊपर। मेन किसी भी काम या कॉज के जो एंड पे जिम्मेदारान और जो मेन लोग होते हैं ना, वो कमिटेड लोग होने चाहिए। मुझसे अगर कोई पूछे किसी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है दीन के काम करने की, कमिटमेंट, मैन ऑफ वर्ड। मैंने कह दिया तो कह दिया, और ऐसे साथी हैं तो ये काम चल रहा है। आंधी तूफान, बिजली पानी, जाए आए, वो अपने काम पे खड़े हैं। काम भी आता होगा ना, मूसा की जुबान में लुकनत थी, ऐब होता है। अल्लाह ने मूसा को फिर भी चुना। अल्लाह लुकनत वाली जुबान से अपना पैगाम दिला लेगा। शर्त एक है, करने वाला अपनी उस चीज़ से सिंसियर हो। तो लिहाजा इस काम में मर्जियां नहीं चलती, कभी आए कभी नहीं आए, छोटी छोटी बातें। और हमारे माशरे की रसूमा बहुत बड़ा उजर है हमारे इस काम से सिटकने की। छोटी छोटी सोशलाइजिंग्स, आज घर में दावत है, शॉपिंग करनी है, घर साफ करना है, मासी आ रही है, ये कोई बात है? मुझे तो वो आयत याद आ रही है जो बनी इसराइल ने मूसा से कही थी कि फसा बन तब रब्बू का फ़कातिला, ए मूसा तू और तेरा रब जार लड़ ले, इतना हा होना कायद हूँ। हम यहाँ बैठे हैं अभी, यानी हमें बड़े काम है। अभी हमने फेशियल कराने, अभी हमने घर साफ करने, अभी हमने नाखूनों को पॉलिश कराना, अभी हमने जूते खरीदने, अभी ज्वेलरी। तुम जाओ, हम बहुत बिजी लोग हैं। हाँ, जब फतह हो जाएगी तो बताना, हम झंडा पकड़ने के लिए आ जाएंगे। ऐसे लोगों से बड़े काम नहीं होते। लिख लीजिए, बड़े काम हमेशा डिसिप्लिन से होंगे। आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी का कोई एक करिकुलम खोल लीजिए, उनका काम करने का तरीका देखिए। आप इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान के किसी अच्छे इदारे को देख लीजिए। की रूल इज डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, अदरवाइज फिर वो एक बस ऊपर ऊपर की बेल वाला काम होता है, दरख्त वाला काम नहीं बनता। फिर इसमें आप देखिए कि हर बंदे को ये लगता है मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है, आपको नहीं पता। तो फिर हमेशा याद रखिए, हर बंदे के साथ एक बैकअप, हर बंदे के पास एक डुप्लीकेशन होनी चाहिए। मजबूरी है, जहाज में जो पायलट होते हैं उनके साथ हमेशा स्टैंड बाई 2 पायलट होते हैं। एक को कुछ हो जाए तो दूसरा उसकी जगह आ जाए। तीन का काम तनहा नहीं चलता। आज मेरी आंखें बंद हों तो मेरे इस काम का क्या होगा? आप अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह मेरा काम मुझसे ही ले। अल्लाहुम्मा इस्तखदिमनी वला ततबद्दलनी, अल्लाह मेरे से ही अपने दीन की खिदमत ले ले, मुझे बदलना ना, कोई मुझे रिप्लेस ना करे। और इसके लिए आपको तड़पना पड़ेगा इंशाल्लाह। फिर याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम्हारी औलादें और तुम्हारे माल और बच्चे, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। सूरत तकाबुन की आयत 14, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वु लकुम, ए ईमान वालों तुम्हारे बाज़, सारे नहीं, तुम में से बाज़ के अजवाज और औलादे उनकी दुश्मन है। कौन सी दुश्मन है? जो अल्लाह की रजा से रोके, जो अल्लाह के कामों से रोक सकता है। करो क्या, सब तलाकें लेके घर बैठ जाओ और बच्चों को अक कर दो? नहीं। तीन लफ्ज़ हैं डिक्शनरी में माफ़ करने के, फ़ाहज़रूहुम वइन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू। तुम्हें अक्ल होनी चाहिए कि इनको डील कैसे करना है, इन जिम्मेदारियों को दीन के कामों के साथ लेके कैसे चलना है। आप माल के लिए गए, माल आजमाइश बनेगा। किसी रिश्ते के लिए गए, किसी रिश्ते को खुश करने के लिए गए, वही रिश्ता आजमाइश बनेगा। डरते डरते दिल में खौफ रखते हुए कहा करें कि अल्लाह मुझसे ये काम लेता ही रहे, मुझे रुसवा ना करना, मुझे शर्मिंदा ना करना। आप देखिए कि अबू बकर सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अपनी मनसब पे थे। इस्लाम में रिटायरिज्म भी नहीं है। नहीं, हम बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो गए, आप किसी और को ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। और यही चीज़ इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। फिर मुझे सूरह हज की आयत 11 भी याद आ रही है कि वमिन नास मैयाबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में कोई ऐसा है जो किनारों पर रह के अल्लाह की इबादत करता है। अगर उसे भलाई पहुंचती है तो मुतमईन, और ज़रा सी आजमाइश पहुंचती है तो चेहरे के बल वापस पलटता है, तो दुनिया भी गई तो आखरत भी, पूरा खुसरान है। ये भी आज ऐसी है, किनारों पे ना दीन का काम करें, आप कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसके किनारे पे ना रहें। आधा दिल होता है किनारे पे, पूरा दिल लेकर बीच में मिडल में आइए। एक बंदा कह सकता है मैंने 3 साल में छुट्टी नहीं की, एक बंदा कह सकता है मैंने पिछले 8 साल में एक छुट्टी नहीं की, तो मैं क्यों नहीं कह सकती? हम इंसान हैं सब। दुआ करके नए कोर्सेज में आइए कि अल्लाह मैंने अगले कोर्सेज में छुट्टी नहीं करनी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आप हर मीटिंग को अहमियत देंगे, आप हर ट्रेनिंग के ऊपर कान धरेंगे, आपको कभी कोई नहीं बदलेगा। कई पुर्जे बदले जाते हैं, कई नहीं बदले जाते, इनको नहीं निकालना, नए लगाते जाओ। ये आपकी मेरी हैसियत होनी चाहिए इस काम में, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। आज हम बात करें और दाईये दीन में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दावत के रास्ते की रुकावटें, दो तीन आज समझ ली। बग़ैर इजाज़त के आगे पीछे होना, रसूल की बात को अहमियत ना देना। तीसरी चीज़ है नजवा। नजवा क्या है, मैं मुख्तसरन बात करके तो फिर आपको इसके ऊपर ले चलती हूँ। आप देखिए कुरान पाक में बहुत खूबसूरत तरीके से नजवा को एक्सप्लेन किया। देखिए मैंने इसका एक नाम रखा हुआ है, इज्तमाई गीबत। आप और मैं अपने किसी काम को करें, मैं अपना दिल का दुख आपसे करूं, आप मेरे से करें, किसी वक्त मशवरा लेने के लिए, किसी वक्त अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और फिर आप मेरा या मैं आपका वो पकड़ के किसी और को दे, बुरा लगेगा ना? और गीबत की कितनी बड़ी सज़ा है, मुर्दा भाई का गोश्त खाना। किसी को चिकन अच्छा लगता है, किसी को बीफ अच्छा लगता है, किसी को सी फूड अच्छी लगती है, बट कुछ का पसंदीदा गोश्त ह्यूमन मीट होता है, क्योंकि दे लाइक गीबत। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें इसके बारे में भी अलग नहीं किया। आप इन आयतों में जिस पे बात होती है अमूमन, अगर आप नोट करें, इन्नमा नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल लज़ीना आमनू। नजवा तो शैतानी फेल है ताकि ईमान वालों के दिल परेशान हो। सूरह मुजादला आयत नंबर 13 बहुत ही खूबसूरत तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें बुनियाद बनाते हुए कुछ और बातें भी सिखाई गई हैं। मैं इसका पूरे का रवान तर्जुमा आपके सामने पढ़ती हूँ। मैं इसका एक दफ़ा पहले रवान तर्जुमा करके तो फिर इसके अंदर से जो अमल की बातें वो निकालेंगे। आयत नंबर 8 सूरत मुजादिला भी है और मुजादला भी है, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अलम तरइलल्लज़ीनहु अनिन्नजवा, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें सरगोशियाँ करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वो वही हरकतें किए जाते हैं जिससे इन्हें मना किया गया था। ये लोग छुप छुप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें इस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं किया है, और अपने दिलों में कहते हैं, नबी के खिलाफ क्या कमेंट्स देते थे, और अपने दिलों में ये बात कहते हैं कि इन बातों पे जो हम करते हैं अल्लाह हमें पकड़ता क्यों नहीं। यानी पहले बातें कर लेते थे और फिर कहते थे हमारी इन बातों पे अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता। अल्लाह ताला का फैसला, इनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, इसी का वो ईंधन बनेंगे और बड़ा ही बुरा अंजाम है इनका। ये कुछ ख्यानतें थी जो नबी के दौर में उनकी महफिलों के इर्द गिर्द हो रही होती थी, उसका जिक्र है। ईमान वालों को क्या कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजैतुम फ़ला ततनाजौ बिलइस्मि वल उद्वान। ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में पोशीदा बात करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें नहीं, बल्कि नेकी और तकवा की बातें करो। यानी छुप छुप के कानों में गुनाहों की बातें ना करो, बल्कि सरेआम नेकी और तकवा की बातें करो, और उस अल्लाह से डरते रहो जिसके हजूर तुम्हें हशर में पेश होना है। तो रह गई नजवा, तो ये किसका काम है? इन्नमन नजवा मिनश शैतान, कानाफूसी तो एक शैतानी काम है। वो इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग इससे रंजीदा हों, हालांकि अल्लाह की इजाज़त के बगैर वो इन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और मोमिनों को बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। बस इतनी आयतें, खुलासा लिखिए। आप और मैं क्या कर रहे हैं? अल्लाह के दीन को बुलंद करने का काम। अल्लाह का दीन फैले, ये सबसे ज़्यादा बुरा किसको लगेगा? शैतान को। चूंकि दावत इल्लाह का काम सरासर शैतान को ललकारने वाला काम है, लिहाजा शैतान का हदफ, टारगेट, गोल क्या है कि दीन का काम करने में रखने आए। ये रखने जो हैं ये वो नजवा के जरिए डालता है। नजवा क्या है? वसवसा अंदाजी। अच्छा खासा एक इंसान एक अच्छे काम पे लगा होता है, शैतान क्या करता है? नंबर 1, शैतान की सबसे पहली कोशिश क्या होती है? काम करने वालों के दिलों में वसवसे डाले, इस काम के खिलाफ उनके दिल में कुछ शुभहात डाल दे, लोगों की नियतों पे शक डाल दे, तरीक़ाकार ठीक नहीं ये जुमला डाल दे, और इस तरीके से उनके दिल में ख्यालात डाल दे कि किसी तरह से वो इस इज्तमाई काम को छोड़ें और कट कर अलग हो जाएं। और फिर लोग कहें, शुरू में ये लोग इकट्ठे थे, अब अलग हो गए हैं, ये एक से दो हो गए और फिर दो से चार मस्जिदें बन गईं। शैतान का ये काम है साथ काम करने वालों को कभी मकसद के बारे में, कभी दाई के बारे में, कभी अमीर के बारे में, किसी के नाम से वसवसे डाल देता है। दूसरा काम शैतान का, ये काम वो कैसे हदफ हासिल करता है? एक तो वसवसे डाल के, दूसरा बंदे की नफ्सियातनी, जो नफ्सियाती उसकी ज़रूरियात है ना, उसको एक्सप्लॉयट करता है। मुझे किसी ने ये कह दिया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे पूछा नहीं, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे पीछे डाल दिया, था तो मैं डिजर्व करता इस बात को, दे किसी और को दिया। अंदर बैठे हुए लोग जो दीन का काम मिलके एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं ना, उनके दिल में आपस में रंजिशें डालता है। बात समझ गए? मकसद उसका एक है, जमीयत टूटे, इज्तमाईयत टूटे, रखने डले, बदगुमानियाँ हों, दिलों में कदूरतें आएँ और ये बुनियानों मरसूस न बन सकें, सीसा पिलाई दीवार न बने। और जब साथ काम करने वालों के दिल खट्टे और खोटे, तो काम में खाक दिल लगेगा। असल में फिर बदनाम होगा दीन, बदनाम होंगी मस्जिदें, बदनाम होंगे मदरसे, और फिर शैतान जे ले जाएगा। एक शैतान की नजवा की तीसरी कोशिश क्या होती है? अमीर और मामूरीन के बीच में, अमीर कौन है? लीडर। मामूरीन कौन है? जो उसके अंडर हैं। इनके बीच में ताल्लुकात को ख़राब करते हैं, उससे मेरी नहीं बनती, फेवरेटिज्म है, और वो मुझे पीछे करते हैं, वो तो अपनी पसंद के लोगों को आगे लाएंगे। यानी एक बड़ा प्यारा ताल्लुक होता है, ये तो वही जानते हैं जिनका है, कैसे खून की तरह गर्दिश करता है प्यार ऐसे लोगों का जो साथ काम करते हैं। तो शैतान इन सारी चीज़ों को बिगाड़ता है। इधर बात है जो नजवा की, चौथी चीज़ नोट कीजिए, किसी काम के करने वालों को उस काम की हर बात ना भी सही, लेकिन मोटी मोटी बातें बतानी चाहिए और बताई जाती हैं। मसलन आज खाने में क्या पकेगा दावत में, तो घर वालों को पता होता है, मेहमानों को तो बाद में लगेगा। अब जब साथ काम करते हुए कुछ बातें मशवरे के तौर पर ली जाएं, दी जाएं, या कुछ बातें इस्लाह और कह लीजिए कि तज़किए की खातिर शेयर की जाए, तो उनको बग़ैर इजाज़त के आगे शेयर कर देना। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम सब पांच लोग बैठकर एक कमरे में मीटिंग करें, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई मैसेजिंग नहीं, और वो मीटिंग क्या होगी? एक महफिल, मजलिस। और हदीस में आता है, अल मुस्तशारु मोतमनुन। मजलिस में मशवरा जिनसे तलब किया जाता है वो अमानतदार होते हैं, वो बात आगे नहीं जाएगी। कल के दौर में ऐसा होता था, आज इसके बहुत सारे तरीकों में एक तरीका क्या है? मैसेजिंग। आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, हर ग्रुप पे मेरे पास शायद 100 ग्रुप्स होंगे अल्लाह के हुक्म से, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ मुल्क, क्या ये छोटे स्टूडेंट्स के ग्रुप, एडमिन्स के ग्रुप, ग्रुप्स के फलां फलां। अब आप उसमें कोई मशवरा करते हैं या आप उनको देते हैं, उसके अंदर कोई मैसेज आपके किसी बड़े की तरफ से आए, वो ऐसी ही अमानत है, सुनकर डिलीट कीजिए, उसको दोबारा भी ना सुनिए। क्योंकि अगर ये बैठकर एक जगह मुलाकात में बातें होती तो आपने एक ही दफ़ा सुनना था। लिखिए, हम उसको किसी और मोटिव के लिए यूज़ करें, ये नौजवा है। बस वो ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स, पेपर वर्क, अमानत है, आप उसको किसी और मकसद के लिए यूज़ करें, तो बिला इजाज़त इंफॉर्मेशंस का आगे पास करना, और अगर उस बंदे को पता चल जाए कि आपने ये आगे किए, वो कभी आपको वो चीज़ें नहीं देगा। शैतान इस तरीके से इस काम को लेता है। अब नजवा की जो बड़ी मारूफ तारीफ आपको समझाने के लिए बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप तो शुरू शुरू के मरहलों में है ना, और वो क्या है, महफिल में बैठे थे, मीटिंग थी, चार लोग एक खास लेवल के थे, छह लोग दूसरे थे, एक वो शख्स था जिसने मीटिंग कंडक्ट की। देखिए, मीटिंग का मतलब मैच नहीं होता कि दो लोग बैठकर खेलते रहें और आप बैठे तमाशा ही देखते रहें। जो बंदा मीटिंग में अपनी राय ना दे, या ग्रुप में एडिड है और राय ना दे, उसको निकाल के बाहर मारे, सीधी सी बात है। क्यों जी, आप कोई तमाशा देख रहे हैं? कुछ लोग मीटिंग में नहीं बोलते, राय मांगी जाए नहीं देते, जू ही वहां से उठे मजलिस में, चलो भाई आप सबकी राय से जो बोला जिसने कहा चलो करवा लिया, उठे बाहर कोनों में जाके बातें, मेरी तो ये राय थी, मैं तो बोली नहीं। और बाज़ लोग क्या कहते हैं, इज्जत की वजह से नहीं बोले, झिझक की वजह से नहीं बोले, मेरी सुनेगा कोई नहीं, दिस एंड। याद रखिए, ये नजवा है। आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, बोलिए बताइए कोई अच्छी बात, कोई मशवरा, रमजान में क्या करना है क्या नहीं करना, सुबह में क्या करें, शाम में क्या करें, उर्दू में क्या करें, इंग्लिश में क्या करें? बोलिए बोलिए, कभी कभी ना बोलना जुर्म होता है, और वो मीटिंग है, दिल की बात मीटिंग में ना करना, और जहाँ सब साथी बैठकर प्लान करें ना बोलना, और कुछ और दिल में रख लेना और बाहर किसी एक चाहे बंदे से करें, ये है नमन नजवा में नशेता। होगा क्या, अगला कहेगा हाँ मेरा भी वैसे यही दिल था, मैं बोली नहीं, बात समझ गए। ये इज्तमाई गीबत का इतना बड़ा सिलसिला चल जाता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नाकाम हो जाते हैं ऐसे लोगों की मौजूदगी में। बाज दफ़ा एक ऐसा होता है जिसके ना आने से नुकसान होता है, और बाज दफ़ा एक बंदा आपकी टीम में ऐसा आ जाता है जिसके आने से टीम टूटती है। मिसाल देती हूँ, सफ़ेद चने, एक कीड़ा लगा दाना उसमें डाल दें, सारों को खा जाएगा। सूरह तौबा में अल्लाह ने खोल के कह दिया, अल्लाह के नबी गम ना करो, ये जो पीछे रह गए नहीं आए, ये जो पीछे बैठ के बातें छांट रहे हैं, इन्होंने कोई नहीं आना तबूक से वापस, शुक्र करो नहीं आए, अगर होते तो क्या करते, तुम्हारे बीच में घोड़े दौड़ाते बातों के, और जो नहीं गए थे वो घर बैठ के तबसरे कर रहे थे, आएंगे तो नहीं वापस, देखना ये रोम में गए इनकी कब्रें उधर ही बनेंगी, एक भी नहीं बच के आएगा। कान खड़े थे, रातों को बातें करते थे, अल्लाह ने सारी बातें भी नोट कर दी कुरान में। तो हमेशा याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये बहुत सेक्रेट जॉब है, जब तक पूरा तज़किया ना हुआ हो, तरबियत ना हुई हो, आप ये काम नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो इसका वो लेवल नहीं होगा। ये इकामते दीन का काम है, कोई छोटी बात है, आपसे अल्लाह इतना बड़ा काम ले रहा है, अम्बिया का काम है, आप एक सिस्टम के अंदर आकर काम करें। और कभी कभी क्या होता है, मसलन आप देखें ना कि इज्तमाही ज़िंदगी का काम है, सहाबा कराम की मिसालें हमारे सबके लिए बेहतरीन है, अबू बकर तो बहुत रकीकुल कल्ब थे, उमर यानी उमर जैसा शख्स नबी सल्लम जैसे लीडर की लीडरशिप में चुप रह गया, क्या बात। किसी ने एक जुमला बोला कि उमर फारूक और खालिद बिन वलीद जैसे सरकश घोड़ों को नुकेल डालना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही काम था। अल्लाह के नबी के दुनिया से जाते क्यों इतने फितने शुरू हो गए, एक लीडर के सामने कोई नहीं बोलता, उसके नॉमिनेट के आगे सब बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आप घर में बच्चे ठीक हैं, आप बड़ी बेटी को जिम्मेदार बना के आ गई, घर जाइए देखिए वो बेचारी अपने बाल पकड़ के रो रही होगी, मामा नेक्स्ट टाइम मैं नहीं इन छोटे बच्चों के साथ रहूंगी, होता है ना। उस्ताद एक बात कहते सब मान जाते हैं, ग्रुप लीडर कह देगा कोई नहीं मानते। तो याद रखिए, जो अल्लाह के लिए काम करेगा उसको हमेशा अपनी ज़ात को खैर का जरिया बनाना है। और याद रखिए, ये काम करने वाले बिल्कुल वाकई एक फैमिली की तरह होते हैं, घर में कभी अच्छा कभी बुरा, कभी गर्म कभी सर्द, कभी दाल पकती है कभी चिकन पकता है, कभी लड़ाई भी हो जाती है कभी प्यार मोहब्बत है, इधर डम्प, इसको पकड़ कर आगे ले जाना, इससे नुकसान क्या होगा, दीन कमज़ोर होगा, फूट पड़ेगी, आपस में काम करने वाले साथी खराब होंगे। तो स्ट्रांग लीडरशिप, बिलीव मी, 101 खूबियां होनी चाहिए लीडर बनने के लिए, ये आसान काम नहीं है, इट्स अ एक बिग डील, लोग कहते मानते ही नहीं, क्लास शुरू हुई थी क्या हुआ, फिर वो टेस्ट, वो तो दूसरे पारे के बाद हुए ही नहीं, लोग लेते ही नहीं थे, आते ही नहीं कर, अच्छा कोर्स आपने किया सुनाई असाइनमेंट्स किधर है, वो 5वें पारे के बाद तो स्टूडेंट्स ने ली नहीं, अच्छा माशाल्लाह, वो फीस वो तो 10वें पारे के बाद ख़त्म हो गई थी, लोग देते ही नहीं, ये कहते हैं फिर लीडर्स। कमज़ोर पर्सनैलिटी के साथ हवाओं का रुख आप नहीं मोड़ सकते, तो हमेशा इन चीज़ों को सामने रखिए, ये जरासीम है। बस इतना जुमला बोल के आपको अब एंड पे लेके चलती हूँ कि गीबत से एक रिश्ता टूट सकता है, घराने में बेचैनी आएगी, लेकिन नजवा से पूरा मुआशरा और ख़ानदान, छोड़ दीजिए पूरी उम्मते मुस्लिमा बदनाम होती है। आज किरदार साजी की बहुत ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इदारा थे, एक इंस्टीट्यूशन थे हमारे लिए, आप खुद गोश्त पोस के बने हुए इंसान आज मौजूद नहीं है, लेकिन आपके सिखाए हुए काम, आपकी अहादीस, आपकी बातें, आपके मेरे पास बहुत सारी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अपनी उम्र से छोटों में भी कामयाब थे, अपने उम्र से बड़ों में भी कामयाब थे, और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ लाने के लिए वो सारे मराहल से गुजरना पड़ता है जिससे अल्लाह के नबी ने आपको मुझे गुजरने का हुक्म दिया है। तो पहले तो हम खूबियाँ पढ़ते रहे ना, आज खामियाँ पढ़ के दिल बोझल हुआ है, खौफ आता है, बिलीव में आता है। और ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना कि इल्म और हिल्म और इखलास और अमल, अगर ये चार बुनियादें अपनी सिफात की पुख्ता कर लें तो बाकी चीज़ें पीछे होंगी। कुछ लोगों पे मौत की तरह आपको यकीन होता है कि ये सिंसियर है, ये बात आगे नहीं करेंगे, ये जो मशवरा देंगे ये अपने हालात को देकर नहीं दे रहे, अपने बिना क्यास करे कि मैं क्या कर सकती हूँ, या मैंने मशवरा दिया तो मैं फंस गई, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, ये नहीं। दीन का फ़ायदा किस में? देखिए ये है वो चीज़ जो आपके अंदर आएगी इंशाल्लाह वक्त के साथ, और फिर आप भागेंगे और कोई आपको जेर नहीं कर सकेगा। नाकाबिले तस्खीर होता है दा ये दीन। आप अल्लाह के इस भरोसे पे इस काम में पड़े, नीयत ठीक रखे, तरीक़ाकार अच्छा और फोकस्ड। चार जुमले शुरू में बोले थे बुनियाद के, एहतसाम बिल्ला, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक रखिए। मेरा नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकती, आपका नहीं है तो आप किसी और को नहीं दे सकते। हनीफियत, बी फोकस्ड, इस काम को जिंदगी का फुल टाइम काम बना ले। दिस इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, कोई चीज़ इसमें रुकावट नहीं है। तदरीज काम कीजिए तदरीज के साथ। और फोर्थ, अदीन युस्र, आसानी दीजिए, इजी गोइंग हो, रिलैक्स्ड हो, आपके साथ काम करने ले आपकी मौजूदगी में मज़ा लें, इंजॉय करें आपकी कंपनी। वो ये ना कहें कि हाय अब आप आ गए हैं, पता नहीं आप क्या क्या हुक्म डालेंगे। ठीक है जी, चलिए मैं इख्तितामी कलिमात पढ़ लेती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।